हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। शिविका अपने घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद अब कहीं और जाने का मन नहीं था, लेकिन उसे पता था कि रुद्र समय से पहले ही उसे लेने आ जाएगा, इसलिए वो शाबर लेकर तैयार होने गई और थोड़ी जल्दी ही तैयार हो गई, क्योंकि वो ज्यादा स्पेशल अवसर के लिए तैयार नहीं होती, ऐसे ही आउटिंग के लिए सामान्य ड्रेस पहनती है। फिर जब तक रुद्र नहीं आता, वो अपना समय काव्या के साथ बिताती है। कुछ देर बाद उसे दरवाजे पर किसी के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ सुनकर शिविका काव्या की ओर देखती है और फिर ज्योति से इशारा करती है उसे अपने कमरे में ले जाने के लिए, क्योंकि अगर वो काव्या के सामने वहां से जाती तो काव्या उसे बहुत सारे सवाल करती या फिर साथ चलने की जिद करती। शिविका का इशारा समझते हुए ज्योति उसे अपने कमरे में ले गई। अभी रुद्र आया। उसने शिविका को वहां हॉल में सोफे पर आराम से बैठा हुआ देखा तो कहा, ये इतने आराम से बैठी हुई हो यहाँ पर? तुमने तो बोला था मैं आऊँगा तो तुम रेडी मिलोगी। शिविका उठकर खड़े होते हुए बोली, हाँ तो रेडी होकर फिर आराम से बैठी हूँ। चलो, वैसे इतना ज़रूरी ना हो तो क्या हम बाद में फिर कभी? शिविका अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही रुद्र उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, शिविका यार, तुम्हारा ये फिर कभी ना कभी नहीं आता है, और ये ऐसे कैजुअल कपड़े पहने हैं, किसी बिजनेस मीटिंग के लिए थोड़ी ना चल रहे हैं यार, आउटिंग पर जा रहे हैं, और हो सकता है कि सरप्राइज में कोई पार्टी हो, इसलिए जाओ ड्रेस चेंज करके आओ। शिविका ने अपनी तरफ से पूरी बात समझाते हुए कहा, मुझे भी पता है बिजनेस मीटिंग नहीं है, इसलिए मैंने कैजुअल पहना है, फॉर्मल नहीं, और वैसे भी पार्टी में चलना था तो तूने मुझे पहले ही बताना चाहिए था, मैं उस हिसाब से तैयार होती। अब तुमने सरप्राइज दिया है ना, तो बदले में सरप्राइज लो, और मैं तो इसमें ही जाऊंगी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो फिर प्लान कैंसिल कर देते हैं। रुद्र शिविका को बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वो कितनी बड़ी मूडी है, और कपड़े बदलने की वजह से वो जाना भी कैंसिल कर सकती है, इसलिए वो तुरंत ही बात संभालते हुए बोला, अच्छा ठीक है चलो, इतनी बुरी भी नहीं दिख रही हो, वैसे भी कोई इतनी बड़ी पार्टी नहीं है, बस मेरे नए रेस्टोरेंट का ओपनिंग वीक चल रहा है तो वहाँ पर ही तुम्हें लेकर जाना था। अब तुम ओपनिंग सेरेमनी में तो आई नहीं थी इतना बुलाने पर भी। उसकी बात सुनकर शिविका ने नायकिनी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, तो रेस्टोरेंट की ओपनिंग सेरेमनी के लिए तुम चाहते हो कि मैं पार्टी वियर गाउन पहन कर आऊँ? सीरियसली रुद्र? रुद्र जल्दी जल्दी ना में अपना सिर हिलाकर इस बात के लिए मना करते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, जो तुमने जो भी पहना है सब ठीक है, चलो बस अभी फिलहाल मेरे साथ ही चलो। एक गहरी सांस छोड़ते हुए शिविका ने कहा, हाँ चल ही रही हूँ, बिना ले जाए तो तुम वैसे भी नहीं मानोगे। शिविका रुद्र के साथ वहाँ से निकलने वाली थी तभी उसके डैड अपनी व्हीलचेयर पर बैठे हुए वहाँ पर आए। उनकी ओर देखकर शिविका ने जाने से पहले कहा, डैड, मैं रुद्र के साथ उसके किसी रेस्टोरेंट की ओपनिंग सेरेमनी पर जा रही हूँ, तो डिनर पर आप मेरा वेट मत करिएगा, ऋषभ तो वैसे भी घर पर नहीं है। उसके डैड ने मुस्कुराकर परमिशन देते हुए कहा, हाँ ठीक है जाओ बेटा, अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया, नहीं तो मैं परेशान हो जाता, और वो ऋषभ का बच्चा रहता ही कब है घर पर? लेकिन ऋषभ का नाम आते ही वो थोड़े से हाइपर हो गए, तो शिविका ने उन्हें थोड़ा शांत किया। रुद्र ने भी उसके डैड को हाय हेलो बोला। उसके बाद शिविका रुद्र के साथ वहाँ से निकल गई। दूसरी तरफ ऑफिस बिल्डिंग में सभी को काम समझाते हुए और सुपरवाइज करते हुए करण को आज काफी देर तक वहाँ पर रुकना पड़ रहा था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर सभी ओवरटाइम कर रहे थे, तो उन लोगों को गाइड करने के लिए करण भी उनके साथ वहाँ पर रुका हुआ था। उसके अलावा ऑफिस बिल्डिंग में नीचे VIP लाउंज में बैठा हुआ ऋषभ शाम के 7 बजने का इंतजार कर रहा था। उसने देखा कि 7 बजने में 20 मिनट बाकी थे, तभी वो वहां से कैफे के लिए निकल गया। वो कैफे उसकी बिल्डिंग से मुश्किल से 3 या 4 मिनट के पैदल चलने की दूरी पर था, इसलिए उसने ड्राइवर को कार के साथ वहीं ऑफिस बिल्डिंग के बाहर ही रुकने को कहा और खुद पैदल चलते हुए उस कैफे पर पहुंच गया। ऋषभ समय से पहले ही आ गया था और वहां पर अकेला एक टेबल पर जाकर बैठ गया, जो कि सबसे कोने की टेबल थी, क्योंकि उसे पता था उसे अभी काफी देर समय का इंतजार करना होगा, क्योंकि वो कोचिंग सेंटर से शायद पैदल ही वहां तक आएगा, जिसमें काफी समय लगेगा, क्योंकि उसका कोचिंग सेंटर भी यहां से थोड़ा दूर था। समर के बारे में में सोचते हुए ऋषभ मुस्कुराता हुआ बड़ी खुशी से उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी वेटर वहां पर आया। वो अब तक बिना ऑर्डर दिए ही बैठा था तो वेटर ने उससे ऑर्डर के लिए पूछा। ऋषभ ने भी समय बिताने के लिए अपने लिए एक कोल्ड कॉफी ऑर्डर कर दी और वेटर उसकी कॉफी लेने के लिए वहां से चला गया। वेटर के जाते ही वहां पर सामने ऋषभ को कुछ जानी पहचानी सी लड़कियां नजर आईं। उसमें से दिव्या को वो अच्छी तरह से पहचानता था। बाकी दो लड़कियां जो उसके साथ थीं, वो भी ऑफिस में ही काम करती थीं। लेकिन वो कौन है, ऋषभ उन्हें नाम से नहीं जानता था। ऋषभ को उन लोगों में इतना इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया और अपना मोबाइल फोन निकालकर उसमें ही कुछ देखने लगा। लेकिन दिव्या की नज़र जैसे ही वहां साइड में अकेले बैठे हुए ऋषभ पर पड़ी, उसने अपने साथ की लड़कियों से कहा, स्नेहा वो उधर देखो, वहां पर ऋषभ सर ही है ना, या फिर मुझे ही वहम हो रहा है। दिव्या की बात पर स्नेहा और उसके साथ खड़ी दूसरी लड़की दोनों ने कन्फर्म करते हुए कहा, क्या बात है यार, तेरी नज़र तो बड़ी तेज है, इतने कोने में बैठे हुए भी ऋषभ सर नजर आ गए तुझे, हमें तो दिखे ही नहीं। दिव्या ने ऋषभ की तरफ देखकर तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, अपने अपने इंटरेस्ट की बात है, इंसान को जिस चीज में इंटरेस्ट होता है वो उसे दूर से भी भीड़ में भी नजर आ जाती है। स्नेहा ने मुंह बनाकर अपने चारों तरफ देखते हुए कहा, वैसे ऋषभ सर ऐसी जगह पर क्या कर रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो भी किसी ऐसे मिडिल रेंज के कैफे में आते होंगे। दिव्या भी उसकी बात पर थोड़ा सोचते हुए बोली, हाँ उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी, इसीलिए तो मैंने कन्फर्म करने के लिए तुम लोगों से पूछा, वैसे अकेले ही बैठे हैं, चलो चलकर बात करते हैं। दिव्या का हाथ पकड़कर रोकते हुए स्नेहा ने कहा, नहीं यार दिव्या पागल हो गई है क्या, बॉस के भाई हैं और वो भी एक तरह से हमारे बॉस हैं, इस तरह हम अनऑफिशियली उनसे डायरेक्ट मिलने तो नहीं जा सकते ना, और फिर ऋषभ सर का नेचर भी सबको पता है, कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, ऐसा कुछ बोल दिया और हमारी इंसल्ट हो गई, नहीं नहीं मैं तो नहीं जा रही। वो दोनों ही ऋषभ का नेचर बहुत अच्छी तरह से जानती थीं, इसलिए उनमें से कोई भी ऐसे पब्लिक प्लेस पर अपनी इंसल्ट करवाने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। दिव्या ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, ठीक है यहीं पर रुको और डरती रहो तुम दोनों, मैं ना अकेले ही जाती हूँ। इतना बोलकर दिव्या वहां से आगे बढ़ गई और वो ऋषभ के सामने जाकर खड़ी होते हुए बोली, ओ हाय ऋषभ, तुम यहाँ, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे यहाँ ऐसी जगह पर मिलोगे। ऋषभ ने उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश करते हुए पूछा, ऐसी जगह से क्या मतलब है तुम्हारा, और वैसे भी ये जगह इतनी ही बुरी है तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। दिव्या ने बड़े ही आराम से कहा, नहीं बुरी नहीं है, बस तुम्हारे क्लास और स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ी सी चीप है, और मुझे लगा था। ऋषभ ने सीधे ही एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, तुम्हें कुछ ज्यादा ही लगता है दिव्या, इतना तुम्हें दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। दिव्या अपने दोनों हाथ ऊपर हवा में उठाकर सॉरी बोलते हुए दिव्या ने कहा,
ओके सॉरी माय बैड, शायद मैंने थोड़ा स्टूपिड क्वेश्चन पूछ लिया, बट क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ, वैसे बैठ ही जाती हूँ, तुम अकेले ही तो हो यहाँ पर। दिव्या ने ये सवाल पूछा और ऋषभ उसकी बात का कोई भी जवाब दे पाता उससे पहले ही वो एकदम बेशर्मी दिखाते हुए खुद ही वहाँ उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसके इस तरह जबरदस्ती बैठने पर ऋषभ को बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही वेटर वहां पर आ गया उसका दिया हुआ ऑर्डर लेकर। और वेटर ने जैसे ही ऋषभ की कॉफी उसके सामने रखी, दिव्या ने उस पर एक नजर डालते हुए कहा, ओ वाओ अमेरिकानो, मेरी भी यही फेवरेट है। ऋषभ ने तुरंत उसकी बात काटते हुए बोला, मैंने तुमसे नहीं पूछा और वैसे भी ये मेरी फेवरेट नहीं है, मैंने बस ऐसे ही रैंडमली ऑर्डर की थी। उसकी ऐसी बातें सुनकर दिव्या को बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो ऋषभ का नेचर जानती थी, वो हमेशा ही इसी तरह से बेरुखी से बात करता था, इसलिए उसने ज्यादा बात दिल पर नहीं ली और वेटर की तरफ देखते हुए अपनी कॉफी का ऑर्डर भी दे दिया। ऑर्डर देने के बाद वो दोबारा ऋषभ से कुछ बात करने के लिए उसकी तरफ मुड़ी तो ऋषभ ने गुस्से से टेबल पर अपना हाथ पटक देते हुए कहा, दिव्या आई थिंक दिस इज टू मच, और मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ, मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। थोड़ा सा फ्लर्ट करते हुए दिव्या ने कहा, यहाँ पर वेट, लेकिन किसका, और वैसे भी जो इतना वेट करवाया था उसके लिए नहीं रुकना चाहिए, क्या पता आप कोई बेहतर डिजर्व करते हो। ऋषभ ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए दिव्या से कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए कोई भी बेहतर, मैं जिसका वेट कर रहा हूँ मुझे उसी से ही मिलना है, सो यू प्लीज। उसे इस तरह गुस्से में देखकर दिव्या उसे शांत कराने की कोशिश करते हुए बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, नाराज क्यों हो रहे हो, मिल लेना उससे भी, मैं कौन सा मना कर रही हूँ, लेकिन जब तक वो नहीं आ रहा तब तक तुम्हें कंपनी तो दे सकती हूँ ना। ऋषभ ने इधर उधर देखते हुए थोड़ी धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी कंपनी होने से तो अच्छा है इंसान घंटों अकेला ही बैठा रहे, वो ज्यादा बेहतर होगा, कम से कम बकवास बातें तो नहीं झेलनी पड़ेंगी। लेकिन उसकी आवाज इतनी भी धीमी नहीं थी कि एकदम सामने और नजदीक बैठी हुई दिव्या को भी सुनाई ना दे। वो बात सुनते ही दिव्या ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस ऋषभ, मैं इतनी अच्छी तरह से पेश आ रही हूँ तुम्हारे साथ और तुम हो कि मेरी इंसल्ट पर इंसल्ट करते जा रहे हो, ऐसा क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? ऋषभ समझ गया कि दिव्या ने उसकी बात सुन ली, असल में वो सारी बातें वो दिव्या को सुनाने के लिए ही बोल रहा था, इसलिए वो एकदम सीधे ही उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, वो क्या है ना दिव्या, मुझे तुम्हारे जैसे चिपकू और पीछे पड़ने वाले लोग पसंद वही हैं, जो कि डायरेक्टली मना करने के बाद भी पीछे लगे रहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें आज क्लियरली बता देता हूँ कि तुम्हारे जैसी लड़की में मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, सो प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ तो ही अच्छा होगा। क्रमशः